अच्छी बात है, अब आपने फैसला कर लिया है तो हमारे कुछ भी बोलने या समझाने का तो कोई फायदा होगा ही नहीं। जब आपने सोच ही लिया है कि आपको मानव से कोई रिश्ता ही नहीं रखना, तो उनसे मिलकर बात करके आप करेंगी भी क्या? हम जाकर मानव को बोल देते हैं कि अब आप उनसे मिलना नहीं चाहती, उनसे कोई बात नहीं करना चाहती, आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती, तो वो वापस चले जाएं और दोबारा कभी आपसे मिलने या बात करने की कोशिश ना करें, भूल जाए आपको जैसे आप उन्हें भूलने की कोशिश कर रही हैं। दादाजी की बात सुनकर नित्या को जोर का झटका जोरों से लगा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, कानों को जैसे अपनी सुनी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। दादाजी खुद में बड़बड़ाते हुए बेड से उतर गए और जैसे ही जाने लगे, नित्या ने लपक कर दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। दादू, क्या कहा आपने? क्या मानव आया है? दादीजी ठहर गए और मायूस चेहरा बना लिया। हाँ, उन्हीं का फोन आया था हमें कि वो घर के बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं तो हम आपको बाहर भेज दें, तभी हम आपको देखने आए थे। लेकिन अब इसका क्या फायदा? आपने तो सोच लिया है कि अब आपको उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और जब आपने फैसला कर लिया है कि आपको उनसे अब कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, तो उनसे मिलने बात करने की ज़रूरत ही क्या है? हम अभी मानव को फ़ोन करके आपका फैसला बता देते हैं और उन्हें अच्छे से समझा भी देते हैं कि दोबारा कभी यहाँ ना आए, आपको परेशान भी ना करें। दादाजी ने नित्या से अपना हाथ छुड़वाया और पॉकेट से फ़ोन निकालकर मानव को फ़ोन लगाने लगे थे कि नित्या ने हड़बड़ाते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। दादू, रुको ना, पहले मुझे ठीक से बताओ तो सही, क्या मानव सच में मुझसे मिलने आया है? खुद से आया है? आपने तो नहीं बुलाया उसे? हम क्यों बुलाएंगे, वो खुद ही आए हैं, शायद आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको तो उनसे अब कुछ बात करनी नहीं है, तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि आप उनसे नहीं मिलना चाहती। दादी फिर फ़ोन लगाने लगे। नित्या के चेहरे पर एक साथ कई भाव आ जा रहे थे। वो खुश थी, हैरान थी, उसके लिए अब भी इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था कि मानव सच में खुद से उससे मिलने आया है। हेलो मानव, नित्या के कानों में दादू की आवाज़ पड़ी। तब जाकर वो अपने सेंसेस में लौटी और बिना एक पल गवाए उसने दादू के हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान पर लगा लिया। हेलो दादाजी, क्या नित्या आ रही है? दूसरी तरफ से मानव की आवाज़ आई। कितने वक्त बाद नित्या उसकी आवाज़ सुन रही थी। पल भर के लिए उसकी आँखें बंद हो गईं, चेहरे पर सुकून सा उतरा। मानव इस वक्त शेरकिल हाउस के बाहर फ़ोन कान पर लगाए दादाजी के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। उनके रिप्लाई के बजाय उसके हिस्से गहरी खामोशी आई और साथ में किसी की गहरी सांसों की आवाज़। मानव के एक्सप्रेशन बदलने लगे, आंखों में अलग सी चमक आ गई। उसने बेचैनी से पुकारा, नित्या, नित्या तुम हो? नित्या के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसका दिमाग एकदम से अलर्ट हो गया। उसने झटके से अपनी आंखें खोल दीं। नित्या, मैं जानता हूँ इस वक्त फ़ोन पर तुम हो। नित्या, मैं इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो भी हुआ मुझे तुम्हें उसके बारे में बताना है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए बाहर आ जाओगी? नहीं, नित्या ने सपाट लहजे में कहा और फ़ोन दादू को पकड़ाकर खुद बेड पर गिर गई, पिलो में अपना चेहरा छुपा लिया। दादू के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। मानव बेटा, नित्या अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम अभी वापस चले जाओ, मैं पहले उससे बात करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। दादू की बात सुनकर नित्या ने पिलो से चेहरा बाहर निकाला और गुस्से से तेज आवाज में बोली, खबरदार जो तुम यहाँ से गए, अगर अभी तुम यहाँ से चले गए तो याद रखना जिंदगी में दोबारा कभी मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। आवाज फोन के दूसरी तरफ मौजूद मानव के कानों तक भी पहुंची। दादू के साथ वो भी चौंक गया। नित्या, वो पिछले आधे घंटे से बाहर खड़ा है, जब अभी तुम्हें उससे मिलना ही नहीं है तो उसे रोक कर क्यों रखना चाहती हो? दादाजी ने हैरानगी से पूछा। नित्या ने व्यंग्य भरे अंदाज में कहा, मैंने इतने महीने इसका इंतजार किया, क्या ये कुछ घंटे भी मेरा वेट नहीं कर सकता? नित्या, दादाजी ने कुछ कहना चाहा लेकिन मानव ने उन्हें रोक दिया। दादू, उसे कुछ मत कहिए और फोन स्पीकर पर करिए, मुझे नित्या से कुछ बात करनी है। दादाजी ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। नित्या, तुम सुन रही हो मुझे? मानव ने कुछ मिनट इंतजार किया लेकिन दूसरी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने खुद से ही आगे कहना शुरू किया। नित्या, मैं जानता हूँ मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, वजह चाहे जो हो लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट किया है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो और होना भी चाहिए, मैं बस एक बार तुमसे मिलकर तुम्हें सब बताना चाहता हूँ। माना मैं गलत हूँ लेकिन अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए, बस एक बार तुम मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, उसके बाद तुम फैसला करना कि मैं सही हूँ या गलत, तुम्हें मुझे माफ़ करना है या सजा देनी है, मुझे दोनों मंजूर हैं, मैं तुम्हारा गुस्सा सहने और नाराजगी दूर करने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुमसे एक मौका चाहता हूँ। अगर तुम अभी मुझसे नहीं मिलना चाहती, मैंने तुम्हें इतने महीने तक इंतजार करवाया इसलिए तुम भी मुझे इंतजार करवाना चाहती हो तो ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है, मैं यहीं खड़ा हूँ, जब तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने का तुम बाहर आ जाना, और चिंता मत करो जब तक मैं तुमसे मिल नहीं लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। नित्या चुप सी उसकी बात सुनती रही, फिर कॉल कट करके फ़ोन दादू को पकड़ाया और खुद वापस तकिए में मुँह छुपाकर पेट के बल लेट गई। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो, कोई बात नहीं, मैं भी ठान कर आया हूँ कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर करके तुम्हें अपने साथ ही घर लेकर जाऊँगा, चाहे अब उसके लिए मुझसे कितनी भी देर यहाँ खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन बिना तुमसे मिले मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ, मानव ने फोन को देखते हुए खुद से कहा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। वो फैसला कर चुका था और उसके इरादे मजबूत थे, शायद आज वो ठान कर आया था। अचानक ही मानव के कानों में नित्या के शब्द गूंजे। जब वो मानव के जाने की बात सुनकर गुस्सा हो गई थी, उसके तीखे तेवर और अंदाज याद करते हुए मानव के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। तुम तो कुछ ही महीनों में बच्ची से बड़ी हो गई। नाइस, पसंद आया मुझे तुम्हारा ये अंदाज। नित्या बेटा, ये क्या था? दादाजी हैरान थे और थोड़े परेशान भी, जबकि नित्या का चेहरा बिल्कुल सपाट था। दादू, ये मेरे और मानव के बीच की बात है, प्लीज आप बीच में मत आइए, उसका सपोर्ट मत कीजिए और कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नित्या ने साफ शब्दों में उन्हें वहाँ से जाने को कह दिया था। शायद इस बारे में वो अभी कोई बात नहीं करना चाहती थी। देखते देखते कई घंटे गुजर गए थे। सूरज ढलने लगा था, शाम गहराने लगी थी, रात की चादर चारों तरफ अपनी बाहें फैलाने लगी थी। नित्या सुबह से अपने रूम में बंद थी, ना उसने रूम से बाहर कदम रखा, ना ही कुछ खाया, ना ही किसी से बात की, बस बिस्तर पर पड़ी रही। मानव अब भी बाहर खड़ा था, सुबह से वो एक मिनट के लिए भी कहीं नहीं गया था, और ये बात नित्या को दादाजी से पता चली, जो हर कुछ देर में उससे बात करने, उसे समझाने और ये बताने आ रहे थे कि मानव अब भी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन नित्या उनसे भी बात नहीं कर रही थी, उनकी सारी बात सुन रही थी लेकिन जवाब में कुछ बोल नहीं रही थी, जिसकी वजह से दादाजी अलग परेशान हो रहे थे। लेकिन नित्या का गुस्सा और नाराजगी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
नित्या बेटा, ये कैसी जिद है? मानव सुबह से बाहर खड़ा है और अब शाम हो गई है, कुछ देर में रात हो जाएगी। तुम्हारे डैड ने अगर उसे घर के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे, कहीं गुस्से में मानव को चोट ना पहुंचा दें। अगर तुम्हें मानव से नहीं मिलना तो उन्हें जाने के लिए बोल दो। एक बार फिर दादाजी नित्या से बात करने आए थे और उन्हें वो बिस्तर पर पड़ी नजर आईं। मिस्टर शेरगिल के जिक्र से नित्या के एक्सप्रेशन जरा बदले, लेकिन कहा उसने अब भी कुछ भी नहीं। नित्या, मानव सुबह से भूखा प्यासा बाहर खड़ा है, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्यों उन्हें और खुद को इतना परेशान कर रही हो? जाओ मिल लो उनसे, एक बार बात कर लो। तुम्हारे डैड के आने से पहले चली जाओ, अगर वो आ गए तो फिर तुम्हें मानव से मिलने भी नहीं देंगे, और इन दिनों जितने गुस्से में वो रहते हैं पता नहीं मानव के साथ क्या करेंगे। बाहर मानव खड़ा नित्या का इंतजार कर रहा था, तभी एक कार ठीक उसके सामने आकर रुकी। पीछे की सीट का गेट खुला और मिस्टर शेरगिल बाहर निकले, जिनका चेहरा किसी राक्षस जैसा डरावना लग रहा था और आंखें सुर्ख रंग में रंगी थीं। गुस्से से उन्होंने जबड़ा भेजा हुआ था। टू बी कंटिन्यूड।